Today is 16th October, Wednesday, and Tracy M.I. is going to shoot googly on me. Please, you don't mind getting clean bold. Yes. Toby, you ask in English, I'll answer in Hindi, because our friends are also here. They also.
No, sir, I will simple way also.
Simple, in the simple.
There was a theme like bridging the gap. Bridging the gap. So how people can work for that? Bridging the gap. Because whenever there is a gap comes, always problem comes. Because even if you are working in one hospital, one institution, there are different department is there, different. So we cannot compare what I feel like. We cannot compare one department to another department. So everyone should think that their job should be completed in proper way how the institution needs. So that, but you, I cannot compare my work to other department or other work, department cannot compare their work to me. So then everyone should see that the bridging the gap. You, everyone should see that they will bridge a gap instead of gapping the bridge. It is better. So what I feel, if I am doing some work like that, I have to concentrate my work, whether I am doing properly, whether I am doing any mistake, whether I am correct, proper, what are the rules, and especially in Bhakti Vedanta, we are in spiritual way, we have to think. So whether the whatever work I am doing, whether it is a spiritual way it is going, whether it is proper way I am doing, instead of looking at Bhadrapriya, what she is doing, whether she is going proper way, or mine is correct, she is not. Instead of putting somebody down, somebody up, I feel like how this can be brought together, like whether you are in teaching line, whether you are in clinical side. And especially now for teaching and clinical side is totally different actually. Clinical side work is totally different, because why I am talking this, because I have worked in clinical for a long time. And now I am working in teaching line. So you cannot compare teaching line to clinical side at all. Clinical side work is, sir, that is technically what we are doing, that if you have a skill you are finishing then and there, then you are totally within different way. Teaching side is totally different, like your clinical side as well as technical side as well as managerial side, thinking process, this all too much. So what I feel like for me, whatever, because I worked in both sides, I felt this is more stressful here.
Yeah, teaching side.
Teaching side.
Achha.
Teaching side is more stressful. There is no doubt, because I am not asking anyone. This is what I am telling is my own experience, because I have experience there and experience here. Clinical side, yes, sir, you also know when we are in NICU, what are the problems has happened. But I never felt, because I felt everyone was with me. That has happened, that a child was abduction was, but I was in the family, I was there, but I am the in charge of NICU, but I never felt a 0.1% of stress, sir, you know that. Because everyone was there, sir, was report, just give everyone, is for security, everyone. I was totally protected. Night and day I was there, but still I never felt. But here, certain things, sir, you have to take your stress alone, like so many, I said, we cannot open it, because we are handling a student, not the patient. So how you can bring all together, everyone should think in a same way, what to say, in a proper way, not comparing to anyone, she is doing good, she is, I said, kuch, I don't know, this is my, like, total, some spiritual togetherness. Bridge, strong bridge you have to make it. That is what I feel.
So first of all, I want to thank you for being honest, whatever you have said from honest point of view. तो सब लोगों को साथ में कैसे लाया जाए और जो ब्रिज है उसको कैसे जोड़ा जाए, उसमें दूर दूर गैप डालने के बदले में गैप कम कम कैसे की जाए, तो इसके उत्तर ऐसा है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका, बट प्रश्न तो है ही डेफिनेटली, इसका उत्तर देना पड़ेगा. तो आपको पता है कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, कलयुग के हाथ में आपके खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? लॉ ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग नहीं होना, ये सबसे बड़ा कलयुग का अस्त्र है. वो इतना आसान अस्त्र है कलयुग के पास, वो सबके बिल डाल देते हैं। एवरीबडी नो कोऑपरेशन। लेकिन आप देखें ना, मैं जब इनका प्रश्न सुन रहा था तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि आपके पास दो आंखें हैं, आपके पास एक नाक है, आपके पास एक पेट है, एक लीवर है, दो किडनी है, कभी झगड़ा करते क्या वो? आप बेचारे आंखों को देखो, एक साथ यहां मुड़ते हैं, एक साथ वहां मुड़ते हैं। देखो आप, कोई सोचा आपने इसके बारे में? कभी भी आंख दिखता है क्या? एक आंख यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसा होता है कभी? एक साथ में बंद होते हैं, एक साथ में खुल जाते हैं, एक साथ में इधर देखते हैं, एक साथ में उधर देखते हैं, एक साथ में सो जाते हैं, एक साथ में उठ जाते हैं, ऐसा क्या? एक ही आंख उठती है, बाद में दूसरी आंख उठती है, ऐसा होता है कभी? और वो भी जो मन कहता है वहीं देखते हो, ऐसा नहीं बोलते कि मन तुमको क्या देखना है, उधर देखना है? नहीं नहीं, मुझे उधर देखना है। तो ऐसा कभी होता है क्या कि मन कुछ बोल रहा है, आंख कहीं कुछ और कर रही है? कितना कोऑपरेशन है देखो। तो ऐसा ही हार्ट का है, सब सो जाते हैं, हार्ट नहीं सोता है, ब्रेन भी सोता है, पर हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता है। पर कभी हार्ट किसी को कंडेम करता है क्या? क्या तुम लोग सब लोग सोते हो, मैं दिन भर काम करता हूं, अपने आप को क्या समझते हो आप लोग? कोई कंफ्लिक्ट है क्या उसके अंदर? कभी भी नहीं है। लीवर अपना काम कर रहा है, 300 फंक्शन कर रहा है लीवर, 300 फंक्शन। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसको, 300 फंक्शन एक लीवर करता है, बट सब लोग के साथ में मिलकर करता है। जो जो फंक्शन जिसके साथ में करना है वो ये टेस्ट, ये फंक्शन करना है ब्रेन के साथ में, ये फंक्शन करना है किडनी के साथ में, ये फंक्शन करना है स्टमक के साथ में, पैंक्रियास के साथ में, सबके साथ जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा फैक्ट्री है, बिगेस्ट फैक्ट्री इन द बॉडी इज लीवर। तो सबकी गंदगी को निकालना काम इंटेस्टाइन का है और किडनी का है। क्या आप सब लोग गंदगी करते रहते हो और मुझे निकालने का काम दिया गया है? क्या करते हैं आप लोग सब लोग? ऐसा होता है कभी? तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम। इसमें दो बातें हैं, एक काम है अपना काम और एक काम है अपना काम दूसरों के कनेक्शन में कैसा है उसका कनेक्शन है ना। तो यू आर अ प्रिंसिपल, आपका एक काम है, लेकिन योर वर्क इन द इंस्टीट्यूशन वेयर इट फिट्स प्रॉपरली, वो देखना ना आपको। आपके पास अगर कि कोई गहना आपने लाया है जो, तो आप कैसे करते हो? ब्लाउज पे मैच हो रहा है क्या? साड़ी में मैच हो रहा है क्या? जूता कौन से कलर का है? लिपस्टिक कौन से कलर का लगाया है? बिंदी कौन से कलर का लगाया है? सब देखते हैं ना। अपने आप में वो गहना बहुत सुंदर होगा, लेकिन आप क्या देखते हो कि मैं उसको बराबर से मैचिंग करूंगी, कान के साथ में मेरे गले का, इधर बाजू बंद का, इधर का, सबका मैं देखूंगी मैचिंग होता है कि नहीं होता, तभी आप उसको पहनेंगे ना। तो एक होता है अपने आप में बेस्ट होना, और दूसरा होता है कि मैं कहाँ फिट हो रही हूँ, बराबर से नहीं हो रही हूँ, वो देखना, वो बहुत जरूरी है। और अपने आप को अपना काम भी बेस्ट तरीके से करना, और मेरा काम दूसरों से कहाँ कनेक्टेड है वो भी अच्छी तरह से करना, दोनों जरूरी होता है। अगर कोई संस्था को यशस्वी करना है या कोई बॉडी को अगर फंक्शन करना है पूरा, तो किडनी अपना फंक्शन बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किडनी अपना फंक्शन इन रिलेशन विथ अदर ऑर्गन्स कैसे कर रही है वो भी देखना है, तब जाके बॉडी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो आगे बढ़ सकती नहीं बॉडी। इसलिए कि सहयोग कैसा करना चाहिए और सहयोग क्यों नहीं होता है? सहयोग इसलिए नहीं होता है कि हम लोग सब लोग के पास फॉल्स ईगो है, वी ऑल हैव मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार की वजह से मैं सहयोग नहीं करता, क्योंकि मिथ्या अहंकार मुझे क्या बोलता है कि मैं बहुत ग्रेट हूं, मेरा जो काम है वो बहुत यूनिक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और मेरे ऐसा कोई नहीं है। ये जैसे ही भावना आ जाती है तो तुरंत दूसरों का काम कम इंपॉर्टेंट नजर आने लगता है। जब मैं कहता हूं कि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरली मैं क्या बोलता हूं, आपका काम मेरे से कम इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे मन में भावना आ गई कि आपका काम मेरे से कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कॉपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे कॉपरेट करना चाहिए। तुरंत ऐसी उम्मीद आ जाती है कि चूंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं लेकिन आप मुझे कॉपरेट करना चाहिए। और जब कभी कोई अपेक्षा दूसरे से हम करते हैं तो कभी सफल नहीं होती, आप मुझसे प्रेम करना चाहिए, ये कभी सफल नहीं होगा, लेकिन मुझे आपसे प्रेम करना चाहिए, तुरंत सफल हो जाएगा। जैसे ही वो मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं, किसी और को करना है तो नहीं हो सकता है। यू कैन डिमांड यू लव मी, यू कोऑपरेट विथ मी, डू इट लाइक दिस, क्योंकि जैसे मुझे मेरा अहंकार है वैसे हर दूसरे को भी अहंकार होता है। और दूसरा कलयुग का सबसे बड़ा शक्ति यही है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। सेकेंड पावर ऑफ कलयुग। उसके वजह से कलयुग में सब जगह लैक ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे स्पेशल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन कभी भी या हमारी आंख है या हमारे कान हैं, इनको वैल्यू कब तक है? जब तक वो बॉडी में अटैच तब तक है ना। तो आपकी आंख बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने उसको निकाल लिया बाहर, उसका वैल्यू है बाहर? उसको फॉर्मूले में डालकर आपको बोतल में रखना पड़ेगा लेबोरेटरी के अंदर, और कोई वैल्यू नहीं है उससे। जब तक ये अटैच है अपने शरीर से, तब तक उसकी वैल्यू है, तब तक उसमें ब्यूटी है, तब तक उसमें फंक्शन है, तब तक सब कुछ है उसके अंदर, जब तक वो बॉडी से अटैच्ड है। जैसे ये उंगली है, फॉर एग्जाम्पल, उंगली में तो क्या है, दिन भर मेहनत करती हूँ, यहाँ वहां से खाना इकट्ठा करके मुंह में डालती हूँ, और ये स्टमक जो है बैठा है आराम से, सब अपने आप गिरता है उसके अंदर। मैं हाथ से करना बंद कर दूंगा, ऐसा अगर उंगली ने बोला तो क्या होगा? उंगली को भी मर जाना होगा एक दिन, क्योंकि जब वो उंगली मुंह में खाना डालने के लिए सहायता करती है, तब वो खाना पेट में जाता है, और वहां से उंगली को भी पोषण प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन इज अवेलेबल टू द फिंगर टू स्टमक ओनली। तो स्टमक को जरूरत नहीं, अपने उंगली को जरूरत नहीं प्राउड होने का कि मैं आपको खिलाता हूं। तो इन टर्न उंगली को भोजन स्टमक के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अगर स्टमक उंगली बोलती है कि आज से मैं इस बॉडी से अपने आप को अलग कर दूंगी, मैं नहीं किसी को खिलाने वाली, जैसे ही बॉडी से अलग हो जाएगी तो उंगली की मृत्यु हो जाएगी, इट बिकम्स अ डेड बॉडी, है ना। तो उंगली का अस्तित्व को महत्व कब से तक, कब तक है? जब तक वो बॉडी से जुड़ा हुआ है। आपकी आंख, आपकी नाक, आपका कान, आपका जिह्वा, आपका स्टमक, सारे ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन ले लो आप, जब तक वो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक उसका वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, ब्यूटी है, सब कुछ है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है तो ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव दिस नॉलेज, कि अकेले में मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब मैं किस संस्था से, इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूं तो मेरे को इंपॉर्टेंस है। अगर अपनी कमलक्षी है, शी इज अ लाइब्रेरियन, बट कहीं लाइब्रेरी से जुड़ी होगी तो उसको वैल्यू है लाइब्रेरी का। घर में लाइब्रेरी नहीं है, वो घर में तो कुक है, पत्नी है। तो ये लाइब्रेरी अगर होगी तो आपका वैल्यू है और आपका इंपॉर्टेंस वहां पर समझ सकते हैं कि लाइब्रेरियन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो लाइब्रेरी नहीं तो फायदा क्या? क्रिकेटियर है, क्रिकेटियर उसे टीम में खेलता ही नहीं तो क्या वैल्यू है उसके? अपने आप जो वो घर में बैटिंग कर सकता है, तो कोई टीम में ज्वाइन करेगा, वहां प्रैक्टिस करेगा तो ही वो बैटिंग कर सकता है, उसका स्कोर का गिनती हो सकती है। नहीं तो घर में अगर अपनी दीवार पे चार मारेगा तो कौन लिख के रहेगा उसको फोर मारा उसने का, है ना। समझा ना आपको क्या बोल रहा हूं मैं? आपका इंपॉर्टेंस तब तक है आप किसी से जुड़े हुए हैं तो आपका वैल्यू है उसका, अकेले में कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अहंकार का है, फॉल्सी का, और वो जब तक रहेगा ना, जो व्यक्ति को अहंकार है वो खुश रहेगा, जिसके साथ वो व्यक्ति बैठा है वो लोग खुश रहेंगे, दोनों आदमी दुखी रहेंगे, और जो अहंकार से वो खुद को बड़ा बनाना चाहता है उससे उसको भी खुश को खुशी नहीं मिलने वाली। समझ रहे हो? उठा लो, उठा लो, लिफ्ट द फोन। सो इसलिए आपको समझना ये है कि अगर संस्था में बहुत सारी गैप्स हैं, वो गैप्स केवल हमारे अहंकार से उत्पन्न होती है, दैट्स ऑल। मैं अपने आप को कुछ समझती हूँ या समझता हूँ तो बिल्कुल संस्था के प्रगति के अंदर मैं गैप पैदा करता हूँ, और जैसे ही मैं नम्र बन जाता हूँ वो गैप खत्म हो जाता है, क्योंकि नम्रता ये ऐसा ही एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोऑपरेशन हो सकता है। इफ आई डोंट फील माई सेल्फ बिगर देन यू, आई कैन इजीली कोऑपरेट विद यू। कोऑपरेशन इजी कहां होता है? विद सीनियर और विद जूनियर, बताइए आप। हाँ, विद सीनियर, बिकॉज यू हैव रिस्पेक्ट एंड यू फील हम्बल इन फ्रंट ऑफ सीनियर एंड यू कंसिडर योर सेल्फ लोअर देन द सीनियर एंड इज हायर देन यू, सो इजी फॉर यू कोऑपरेट। और जूनियर का मतलब आई बिकम बॉस, दैट पावर ऑफ फॉल्स ईगो कम्स। and you expect he should cooperate with me. She is junior to me. He is junior to me. We must cooperate. When the expectation comes, things fail there. But if I consider my position is because of what? It's because I am attached to this institution. If I go from here, now I am sitting here giving lecture to you as spiritual care in charge. I am here to give you a lecture. क्योंकि मैं स्पिरिचुअल केयर का अधिकारी हूँ. अभी यहाँ से उतरता हूँ और ट्रेन पे मेरा रूम में जाता हूँ स्टेशन पे. कोई मुझे पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ. वो आम आदमी की तरह मुझे धक्का देंगे और धक्का देंगे और गाली भी देंगे. तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर. हु केयर्स. आप कोई भी हो, फर्स्ट क्लास से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, ट्रेन से क्यों जाते हो, इतने बड़े हो तो ऐसे बोलेंगे तुरंत मुझे, है ना. तो ये संस्था है, मैं यहाँ पर अटैच हूँ, तो मेरी वैल्यू है. एक घर की संस्था है मेरी, वहां पर मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिताजी हूँ, वहां पर मैं अटैच हूँ तो मेरी वैल्यू है. अकेले में मेरी कोई वैल्यू नहीं है. जहाँ पर भी जाऊँगा कोई वैल्यू नहीं है. और जहाँ जाऊँगा वहां पर कुछ बनाना पड़ेगा, मेरे आसपास के लोग इकट्ठा करके कुछ संस्था, कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मेरी वैल्यू वापस तैयार हो जाएगी. लेकिन बिना लोगों के सहयोग से मेरी वैल्यू बनती नहीं है, याद रखना इस बात का, कभी भी नहीं बनती. हम सब लोग कोई कोई ना कोई पोजीशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर आपकी पोजीशन आप देखिए, माइनस द स्कूल वेयर डू यू स्टैंड, माइनस द हॉस्पिटल वेयर डू आई स्टैंड, माइनस माई फैमिली वेयर डू आई स्टैंड. कोई वैल्यू नहीं. जब तक वो लोग है तो मुझे पिताजी के रूप में वैल्यू भी है, पति के रूप में वैल्यू है, बेटे के रूप में वैल्यू है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब का कनेक्शन है, तो मुझे एक उसमें पोजीशन है, उसको वैल्यू है मुझे. लेकिन उसके बिना मैं कितना भी महान आदमी होगा, कोई वैल्यू नहीं उसमें. इसलिए हमको लोगों की जरूरत है, याद रखना, अपने जीवन को अर्थ प्राप्त कराने के लिए, टू क्रिएट मीनिंग फॉर योर लाइफ, यू नीड पीपल अराउंड यू, और उनकी वैल्यू करना हमको सीखना चाहिए. और कोऑपरेशन एक ऐसा विषय है कि वो खुद से शुरू होना चाहिए हमेशा. अगर आपको किसी से भी कोऑपरेशन की अपेक्षा है, इट हैज टू बिगिन फ्रॉम यू. आपके तरफ से ही सहयोग की शुरुआत होनी चाहिए. जो कोई सहयोग करता है उसको सहयोग देते हैं. रिस्पेक्ट भी ऐसी वस्तु है. रिस्पेक्ट भी हमसे शुरू होना चाहिए दूसरे के लिए, तो वो अपने आप हमारे लिए आ जाता है. अगर मैं आपका आदर करूंगा तो नेचुरली आप मेरा आदर करेंगे, और मैं सोचूंगा कि आपसे मैं सीनियर हूं, आपको मेरा आदर करना चाहिए, तो फिर वो कभी नेचुरल नहीं होता है. सो कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, लव, दिस हैज टू बिगिन फ्रॉम अस फर्स्ट. और आप शुरू करने के बाद भी शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हो सकता है, पॉसिबल है. आपको लगेगा मैंने इतना ट्राई किया, कितना कोऑपरेट किया मैंने शुरू से, मैं सीनियर थी फिर भी मैंने किया, फिर भी लोग ऐसे ही यहाँ के, ऐसा आपको लगेगा. वो आपकी परीक्षा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा नेचर जो है, नेचर फॉर एग्जाम्पल, कि हम कॉपरेट करते हैं, लेकिन वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि मैं कॉपरेट करूंगा तब जब मुझे वो कॉपरेट करेगी. वो अनकंडीशनल होना चाहिए कि वो मेरा स्वभाव है कॉपरेट करने का, इसलिए मैं कहीं भी जाऊंगा तो कॉपरेट करते ही रहूंगी. सामने से मुझे कॉपरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी मैं कॉपरेशन करती ही रहूंगी, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है. जहां पर भी जाऊंगी मैं अच्छा टेस्टी खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा स्किल है वो. व्हेरेवर आई गो आई विल कुक टेस्टी फूड ओनली, है ना, प्रेम से ही बनाऊंगी. दिस इज माई नेचर. और अपने आप को अपना नेचर कभी छोड़ना नहीं चाहिए. क्यों? वो कहानी आपको मैंने कई बार बताई है. एक साधु था, वो नदी में स्नान कर रहा था, तो एक बिच्छू था उसको. तो वो नदी में स्नान कर रहा था और बिच्छू डूब रहा था पानी में, तो उसको बचाने गया. वो जैसे ही बचाने गया तो बिच्छू ने उसको डंक मारा, तो दर्द से उसने तुरंत बिच्छू ऐसे हाथ से उड़ गया, फिर डूबने लगा. फिर बिच्छू को बचाने गया वो, जैसे बचाने गया हाथ पे आया तो पर वापस डंक मारा उसने. एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, 50 बार हो गया. तो साथ में अगर आपको बैठना है फोन साइलेंट होना चाहिए, दूसरे बार नहीं बोलूंगा. तो साथ में साधु स्नान कर रहा था उसके साथ. बोले महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, कितना देर से सांप आपको, वो बिच्छू आपको काट रहा है और आप उसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो साधु ने क्या उत्तर दिया कि बिच्छू का नेचर है काटना, मेरा नेचर है बचाना. वो अगर अपने काटने की नजर पे इतना अड़ा हुआ है तो मैं मेरा बचाने का नजर क्यों छोड़ू? वाई आई शुड गिव अप माई नेचर? ही इज सो मच फिक्स ऑन हिज नेचर ऑफ बाइटिंग, तो वाई शुड आई गिव अप माई नेचर ऑफ कंपैशन? मैं साधु, मेरा कर्तव्य है बचाना और दया करना, करुणा करना, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड. उसका नेचर है काटना, क्योंकि वो बिच्छू है. और इतना बार डूबने पर भी वो अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं क्यों मेरा बचाने का स्वभाव छोड़ू? वैसे ही सामने वाले लोग आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको कॉपरेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव है, वो आपका स्वभाव होना चाहिए. फिर आपको फिर अपने आप ही एक दिन कॉपरेशन मिलेगा निश्चित रूप से. और रही बात फैमिली वाली, ये फैमिली वाला एटमॉस्फेयर जो है, फैमिली एटमॉस्फेयर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. एवरीबडी, व्हेन इट विल बिकम फैमिली एटमॉस्फेयर, व्हेन एवरीबडी विल बिहेव लाइक अ फैमिली. जब परिवार की तरह हर एक व्यक्ति यहां पर व्यवहार करेगा ना, तो सबको फैमिली फीलिंग आएगा. जैसे उनका जो आशा जैन का केस हुआ था, एनआईसीयू से एक बालक जो है वो चोरी हो गया. तो जब एनआईसीयू के बालक चोरी हो गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन हेड नर्स को आया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका पेशेंट किधर गया, किधर थे आपका सिस्टर लोग, कहाँ थे, कितने बजे आपने कितने में देखा बच्चे को. लेकिन वो स्थिति इतनी गंभीर थी कि कोई भी व्यक्ति ने ऐसा सोचा नहीं कि चलो अभी सब लोग मिलकर जैसे हम कोई गोले मारते हैं तो उसको ही पकड़ते हैं, सब उसके ऊपर ही ब्लेम डालेंगे उसको. नहीं, क्या हुआ, इतना प्रसंग भयंकर था कि उनकी कुछ गलती ना होते हुए भी वो बच्चा गायब था उधर से. तो फिर मैनेजमेंट और डायरेक्टर और सब लोग, सिक्योरिटी और कस्टमर रिलेशन मैनेज, सब जगह सब लोग खड़े हो गए उधर. उनकी पार्टी बढ़ती गई, सब लोग पूछ रहे बच्चा दो वापस लाके, सबसे पहले बात मत करो, आप लोग क्या समझते हैं अपने आपको, इतनी बातें क्यों करते हो, बच्चा लगा दे दो, ऐसा मतलब यू नो कांट इमेजिन क्या उत्तर देंगे, हमारा उत्तर तो नहीं है. लेकिन उन्होंने एक देखा उसमें कि सब लोग साथ में खड़े हो उधर, एवरीबडी वाज टुगेदर, कुछ लोग शांत खड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, सब लोग खड़े हैं. इसलिए उनको वो लगा कि फैमिली फीलिंग है. इतने भयंकर घटना भी उनको लगा नहीं कि मैं असुरक्षित हूं यहां पर, आई एम इनसिक्योर. क्योंकि मैंने डायरेक्टर का मानता क्या था उसके अंदर, डायरेक्टर डॉक्टर संकी ने क्या किया, जिम्मेदारी अपने सर पे ली और वो उनको फेस कर रहे थे. मैं उनके बाजू में खड़ा था, मैं पता था क्या क्या उनको बोल रहे थे, इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, क्या क्या नहीं बोले उनको. अगर बोलते मुझे पता नहीं, आप हेडनर्स से बात करो, वो उनकी जिम्मेदारी, वो तो उधर आते थे तंग करने के लिए उनको, उन्होंने ऐसा नहीं बोला. एज अ संस्था इंचार्ज उन्होंने वो अपने आप पर लिया कि माय जिम्मेदारी, और क्योंकि उन्होंने अपने आप पर लिया, हम सब पीछे खड़े थे उनके, रेडी थे कभी भी कुछ हो गया तो हेल्प करने के लिए. परिवार की भावना ऐसी होती है, अपने परिवार के सदस्य को मुश्किल में और खुशी में साथ में रखना, ये परिवार के इंचार्ज का ड्यूटी होता है. ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्य ने कुछ अच्छा काम किया तो हाँ मेरे नेतृत्व में किया है, सब क्रेडिट मुझे जाता है ना, ये लीडर नहीं होता. लीडर इज हु पर्सन हु इज हु टेक्स ब्लेम ऑन हिमसेल्फ और सक्सेस ही डिस्ट्रीब्यूट्स टू एवरीबॉडी. आपको पता है ना वो कहानी अब्दुल कलाम की, सुनिए आपने कहानी, अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखी हुई है अग्निपंख में. वो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था यू नो, वो कुछ मिसाइल लॉन्च करके उसको सैटेलाइट लॉन्च करके भेजने का था स्काई में, स्पेस में. तो पूरा उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया था और पेपर को न्यूज़ दिया था, टीवी पर बताया था. अभी शाम को 6 बजे वो लॉन्च करने वाले थे उसको, और पूरा वीडियो कैमरा दूरदर्शन सब सेटिंग किया था उसका. और जैसे ही लॉन्च हो गया वो मिसफायर हो गया और समुद्र में गिर गया. इतने सालों का मेहनत, और वो पूरा यूनिट जो था वो अब्दुल कलाम के डिपार्टमेंट के अंडर दिया गया था, और उसके ऊपर वो ऑफिसर थे, चीफ ऑफिसर जो उनके लीडर थे, और उन्होंने उनको चार्ज दिया था कि ये डिपार्टमेंट आपको संभालना है. नेचुरली से 6 बजे वो उड़ गया और 6:30 को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया हुआ था, रेडी था वो, और वो मिस फायर हो गया और समुद्र में गिर गया. तो उन्होंने अब्दुल कलाम को बताया कि आप मत जाइए, मैं जाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं फेस करूंगा. रिपोर्टर ने बहुत 50 प्रश्न पूछे उनको, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये गिर गया, इतना करोड़ों रुपया खर्च किया नेशनल का. तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, हो सकता है अगली बार उसको अच्छी तरह से करेंगे. ऐसा नहीं बताया वो अब्दुल कलाम था, उसको जिम्मेदारी था, उसको समझा नहीं, उसने गलती कर दिया, समझाऊंगा उसको, दिखाऊंगा, गाइड करूंगा अच्छी तरह से, ऐसे नहीं बताया। पूरा ब्लेम खुद पे लिया, वापस आया और डिपार्टमेंट से मीटिंग किया और अगली स्ट्रैटेजी बनाई, अगले साल दोबारा करना है उसे। अगले साल दोबारा पूरा मेहनत किया, पूरा टाइम डिक्लेयर किया, टीवी न्यूज़पेपर सब वहाँ खड़े हो गए, कैमरे लगे हुए थे, वापस लॉन्च हो गया और सक्सेसफुली आकाश में गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तब वो लीडर ने कहा, उनका नाम मुझे भूल याद नहीं आ रहा है अभी, उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठो और उनके प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि अभी टीम यशस्वी हो गई थी तो वो लीडर अपने टीम को यश बांटना चाहते थे। उसका जो श्रेय ना श्रेय, द क्रेडिट ऑफ दैट सक्सेस ही वांटेड टू गिव टू हिज टीम मैन, तो वो पीछे हट गए। तभी उनको मौका था ना, देखो मेरा डिपार्टमेंट, मेरा प्लानिंग, मेरा नेतृत्व, मेरा लीडरशिप सक्सेसफुल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को भेज दिया। अब्दुल कलाम जी लिखते हैं अपनी किताब में कि अपने ये एग्जाम्पल से उन्होंने सबसे बड़ा लेसन जो है मैनेजमेंट का मुझे सिखा दिया उसके अंदर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन सक्सेस कम्स यू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल योर कलीग्स, व्हेन फेल्यूर कम्स यू टेक इट टू योरसेल्फ, दैट इज लीडरशिप। तो हमको वो देखना है, क्योंकि हम लोग जब हारते हैं तो कभी भी अपना हार का श्रेय अपने को लेते चाहते नहीं, नहीं आई डोंट वांट टू टेक बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिम, इमीडिएट रिएक्शन इज दैट ओनली। किसी को अपने को ब्लेम करना है उसके लिए, क्योंकि अपने को सहन नहीं होता कि मेरे पे कैसा आएगा वो, आई कॉन्ट टेक इट। लेकिन हिम्मत उसी में होती है कि जब हम लोग किसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। हाँ क्या हो रहा है, उनको रोक लो। और उतना बड़ा हृदय होना चाहिए कि जो अब यश मिलता है तो सबको यश बांटना चाहिए, तभी जाकर लोग आपको सलाम करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। जितने भी लीडर हुए ना इंडिया के अंदर बहुत पहले, अभी तो सब लोग लीडर बेकार लोग हैं, सब चोर लोग और सब लोग लुच्चे लोग हैं। पहले जमाने में लीडर्स ऐसे हुआ करते थे। हाउ दे बिल्ड टीम्स, टीम बिल्ड कैसे करते हैं, बाय सैक्रिफाइस। अच्छा हुआ लोगों को उसमें श्रेय देते हैं उसका, कुछ बुरा हुआ तो खुद अपने ब्लेम लेते हैं, सारा गाली भी खुद खाते हैं और ब्लेम भी खुद लेते हैं। पब्लिक को फेस करने का टाइम आता है तो ब्लेम के टाइम पे खुद फेस करते हैं। हॉस्पिटल में हमारे कितने केसेस ऐसे हैं, डॉक्टर संघे सबके बीच में उठकर सब सामने गए हुए हैं, कभी जब मॉब आता है, कुछ गाली होती है, कुछ गलौच होता है, कुछ दंगा होता है, तो सामने गए हुए हैं। इसलिए लोग यहां पर काम करते हैं। उसी तरह से यहां नर्सिंग स्कूल है, या कोई एक्सरे का डिपार्टमेंट है, या कोई पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अगर आप कहते हो कि मैं एचओडी हूं, तो केवल एचओडी का खाली पेपर मिलना आपका इंपोर्टेंट नहीं, आपके नाम पे बोर्ड लगा एचओडी का, तो बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी टीम को हमेशा इंकरेज करना, उनको थैंक यू करना, जितना भी यश मिलेगा उनको ही उसको बांट देना, उनको आगे करना जब यश आता है, जब ब्लेम आता है तो खुद जाना, तो ब्लेम स्वीकार करना। तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों के साथ बैठकर, लेकिन ब्लेम जो है वो सबके सामने जाकर स्वीकार करना उस लीडर का प्रथम कर्तव्य है। उसका ये कार्य करने से सारी टीम का उस पर फेथ पैदा होता है कि यस, वो हमको नीचा नहीं दिखाएंगे सबके सामने, अंदर बैठ के डांटेंगे लेकिन पब्लिक के सामने खुद जाएंगे, तभी फिर गैप पैदा नहीं होती कभी। क्योंकि अगर आपका लीडर सेक्रीफाइस करने को तैयार है तो फिर आप भी पीछे नहीं हटते। और आप देखते हैं लीडर जो है वो हमेशा रेडी है आपको ब्लेम करने के लिए, तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे कभी उसके साथ। आपको मालूम है तो कोऑपरेट करूंगा मैं, वो यश मिलेगा तो अपनी जेब में डालेगा वो, फिर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो कोऑपरेशन ऑल्सो नीड्स इंस्पिरेशन, यू नो, विदाउट इंस्पिरेशन वन कैन नॉट कोऑपरेट। और कौन सा इंस्पिरेशन है, वो अपने लीडर का एग्जाम्पल देख के उसको मिलता है इंस्पिरेशन। इसलिए हम लोग हमेशा आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, एचओडी से लेके सुपरवाइजर से लेके फिर सुपरिंटेंडेंट, फिर और डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। लेकिन हर एक स्टेप के साथ में आपके ऊपर और जिम्मेदारी आती है सेक्रीफाइस करने की। लेकिन लोग कैसे हैं दुनिया में आजकल, उनको खाली पोस्ट चाहिए, लेकिन पोस्ट का जो जिम्मेदारी है वो नहीं चाहिए। पोस्ट का खाली जो रुबाब है, जो एड है, हाँ, जो प्रेज है, वो उनको चाहिए। और पोस्ट के अंदर जो सेक्रीफाइस है, जो ब्लेम होता है, जो तकलीफ होती है, वो उनको नहीं चाहिए। इसलिए कई सारे लोग हमारे हॉस्पिटल के इतिहास में जा चुके हैं छोड़ के, क्योंकि लोगों ने देखा है डिपार्टमेंट का जब यश आता है तो मैडम आगे जाती, हाँ मेरा डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट गड़बड़ होती है तो स्टाफ को भेजती है, और जब उसका होता है प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों हुआ, वो तुरंत बोलती है सिस्टर ने ऐसा किया, वो सिस्टर ने ऐसा किया, वो ऐसे ही है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, उसको स्किल नहीं है, इमीजिएटली वो ब्लेम सबको बांट देते। तो फिर लोग क्या सोचते हैं, अरे जब हमने अच्छा करते हैं तो हमारे को पूछते नहीं कोई, जब मिस्टेक होती है तुरंत ब्लेम आती है हमारे ऊपर, तो इंस्पिरेशन जीरो हो जाता है तुरंत। और जैसे ही यश सबको बांटते हैं तो उनको इंस्पिरेशन मिलता है तुरंत। इसलिए कोऑपरेशन ये एक बहुत बड़ा शब्द है कलयुग के अंदर। सत्ययुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में बहुत अच्छी तरह लोग सहयोग करते थे, क्योंकि एग्जाम्पल भी ऐसे ग्रेट थे उस समय, प्रभु रामचंद्र जैसे एग्जाम्पल थे, पांडव जैसे एग्जाम्पल थे, कितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने। राम को बोला गया कि कल जाना है आपको जंगल में, कल उसका राज्याभिषेक था, कैन यू इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट, कल उसका क्राउनिंग सेरेमनी है, ही इज गोइंग टू बिकम किंग, शाम को उसको बोलते हैं सॉरी सर राजा नहीं बनना है आपको, जंगल में जाना है, तुरंत निकल गए, तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं, शोर मचाया नहीं, पॉलिटिक्स नहीं किया, अपना टीम बनाया, उनको नारेबाजी किया, जा नारेबाजी करो मुझे कैसा भेज सकते जंगल में, मैं तो राजपुत्र हूं, कौन कौन मेरे साथ में, आज का आ जाओ मेरे साथ में, हम नारे लगाएंगे पिताजी के दरबार के सामने, ऐसा कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। तो लोगों को बोलना नहीं पड़ा, लोग अपना घर छोड़ के जाने लगे उसके पीछे, तो आपके साथ में आएंगे, किसको रहना अयोध्या के अंदर, जंगल में अयोध्या बनाएंगे, जहां पर आप रहेंगे वहां अयोध्या बनाएंगे, कितना इंस्पिरेशन था उनके पीछे। लेकिन इंस्पिरेशन कभी होता है, जब त्याग करते ना तभी इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है, फ्री में नहीं मिलता इंस्पिरेशन, खाली मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखने को हूँ, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, तो लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो तब करते हैं जब नेता अपने फॉलोअर्स के लिए सैक्रिफाइस करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके संकट में उसके साथ में रहता है, तभी वो उनको फॉलो करते हैं, उनके हर सुख दुख में वो साथ में रहता है। अगर आपको उम्मीद है कि मुझे इससे कोऑपरेशन चाहिए, तो आप उसके साथ बहुत केयरिंग, बहुत लविंग रिश्ता रखना चाहिए। जब आपका केयर और लव वो देखेंगे तो नेचुरली आपको केयर करेंगे। संस्था में भी ऐसे होता है, जब लोग संस्था के लिए कुछ काम करते हैं तो उसको सराहना मिलनी चाहिए, थैंक यू मिलना चाहिए, और जब वो संकट में आता है तो उसको हेल्प भी मिलनी चाहिए, तो फिर वो संस्था के लिए अपने लिए कोऑपरेशन करेगा। कोऑपरेशन का और एक तरीका है, एक होता है नॉर्मल कोऑपरेशन, काम का कोऑपरेशन, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स कोऑपरेशन, जो आपसे उम्मीद नहीं ऐसा करने की, लेकिन फिर भी आप करते हो जाके, नहीं नहीं मेरी संस्था के लिए मैं करूंगा, मैं अभी 5 बज गए लेकिन नहीं आज मैं 9 बजे घर जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आई कैनॉट लीव। जैसे अब्दुल कलाम जी आए थे, देखो कितना एग्जाम्पल खड़ा किया हॉस्पिटल के लोगों ने, पूरा हॉस्पिटल केवल एक ही बीट्स, हार्ट बीट्स उनकी चल रही थी अब्दुल कलाम के प्रोग्राम, जस्ट इमेजिन व्हाट अ कोऑपरेशन। किसी ने बोला नहीं ओवर टाइम, किसी ने बोला नहीं संडे, किसी ने बोला नहीं मंडे। हाँ अभी अभी का उदाहरण है वो, हम लोग भी सब दंग हो गए देख के, एवरीबडी वॉज पुटिंग देयर हार्ट इन टू कोऑपरेशन, और जब वो कोऑपरेशन हुआ तो सब लोगों को उसमें खुशी मिली, एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरी सिंगल पर्सन जो भी काम कर रहे थे सब लोग बड़े खुश थे उसके अंदर। जिस दिन वो कार्यक्रम हुआ इतने सब लोग शाम को इतने हवा में थे सब लोग, सो हैप्पी देवर, यू नो सो हैप्पी। तो ऐसा मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, लीडरशिप इस तरह से उन्होंने विश्वास दिखाया, इस तरह से उनको इंकरेजमेंट दिया, सब लोग लग गए। इसलिए व्हाट आई फील इज, वन इज ह्यूमिलिटी, अनदर इज इंस्पिरेशन, ये अगर दो चीज होती है तो यू कैन गेट कोऑपरेशन वेरी नाइसली। And before expecting cooperation, one should be ready to give cooperation and also care to the people who are supposed to cooperate with you. And to care for them. और family atmosphere पैदा होने के लिए family के हर एक member को वो atmosphere पैदा करने के लिए सहायता करनी चाहिए। एक आदमी family mood में होगा तो सब लोग family तैयार नहीं होती है। Family जैसे हम बोलते ना कि team work जो होता है ना, वो टीम के लीडर के द्वारा नहीं होता है, टीम के हर एक मेंबर्स के द्वारा होता है। लीडर कितना भी श्रेष्ठ हो, यू मे हैव बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, स्टिल द टीम विल फेल। क्यों? टीम के लोग उतने कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए टीम फेल हो जाती है। और सब ब्लेम लीडर को मिलता है उसके बाद। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति बहुत कोऑपरेटिव है तो एकदम ऑर्डिनरी लीडर भी उस टीम को सक्सेसफुल कर सकता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो कभी कभी एकदम अच्छा लीडर लाने के बाद भी बांग्लादेश की टीम हार जाती है। क्यों हार जाती है? अरे ऑस्ट्रेलिया का एकदम सक्सेसफुल कैप्टन अभी आया हुआ है उधर कोच बन के, फिर भी धनाधन मार खा रहे वो सबसे। क्यों? टीचर तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्टूडेंट इतने अच्छे नहीं है, क्या करेगा वो बेचारा, ऐसा है वो। सो इट्स बोथ आर रिक्वायर्ड, गुड टीचर एंड गुड स्टूडेंट्स, देन द टीचर कैन डू एक्सेलेंट रिजल्ट्स। फैमिली मेंबर का भी ऐसा ही है। तो अभी मैडम ने ये बात खोली है तो आप सबके लिए चैलेंज है ये। अगर यहां पर फैमिली फीलिंग नहीं आ रही है तो आपको सबका जिम्मेदारी है कि इसको बनाना चाहिए, कि जिस फैमिली फीलिंग में आपको सबको आने को अच्छा लगेगा। किसको नहीं अच्छा लगेगा बताओ? जहां फीलिंग फैमिली की है वहां पर किसको काम करना अच्छा लगेगा नहीं, चाहे वो कचरा उठाने की कंपनी क्यों ना हो। कचरा उठाने का भी बिजनेस होता है, कचरा उठाना, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, उसका एक बड़ा साइंस है पूरा। वो कंपनी में आपको काम करने को अच्छा लगेगा, चलेगा? जहां पर कॉपरेशन है वहां पर जाएंगे हम, क्योंकि कॉपरेशन से क्या होता है, कॉपरेशन से क्या होता है कि कॉपरेशन करने वाले और संस्था दोनों का बेनिफिट होता है। बोथ बिकम सक्सेसफुल, दोज़ हू एक्सपेक्ट कॉपरेशन एंड दोज़ हू डू कॉपरेशन, दोनों को यश प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है? खुशी, खुशी। जो खुशी होती ना वो बहुत कीमती होती है, उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद एक बार वो मिल गए ना तो अगली बार भी और कोई प्रोजेक्ट है क्या, वी आर रेडी फॉर द प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है क्या आपका बुलाओ, लोग करना चाहते हैं उसको। एक बार वो कॉपरेशन का सुख किसी ने प्राप्त किया ना, फिर वो और तड़सते हैं कॉपरेट करने के लिए, उनको प्रोजेक्ट चाहिए अभी। ऐसा प्रभुपाद जी ने भी इतना बड़ा संस्था बनाया, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, अकेले आदमी गए थे 70 ईयर्स के एज पे, 70 ईयर के दो हार्ट अटैक के बाद में आदमी पहुंचा उधर ठंडी में। लेकिन पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले सब लोगों का सेवा किया, खाना बनाया, सबको प्लेट में खाना खिलाया, फिर वो गए, फिर खाने का प्लेट धोया, बर्तन धोया, फिर सेकेंड डे वापस हुई, थर्ड डे वापस हुई, फोर्थ डे वापस हुई। तब वो जो आने वाले लोग थे वो सोचने लगे, अरे खाना कौन बनाता है? तो बोलते मैं बनाता हूँ। हूज डूइंग डिशेस? बर्तन कौन मांझता है? मैं मांझता हूँ। अच्छा आप करते हैं? कोई सर्वेंट नहीं है। तो आदमी बोला कि अरे इतने दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर खा रहे हैं, आधा आधा छोड़ के जा रहे हैं, और नेक्स्ट डे वापस प्लेट चकाचक साफ स्वच्छ प्लेट दिखाई पड़ती है, खाना भी मिलता है उसके अंदर। मतलब इतना दिन से ये बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था? अरे रे 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 रे। फिर मैंने पूछा मैं कर सकता हूँ क्या इसको? ना करो। मैं सब्जी ला सकता हूँ क्या? लाओ। मैं काट सकता हूँ क्या? काटो। मैं धो सकता हूँ क्या? धोलो। पहले खुद किया, इंस्पिरेशन दिया, फिर लोगों ने अपने आप उसको किया, और नो पेमेंट। बोले तो ऐसे बोले कि मैं बांधू क्या, मेरे कितना डॉलर देंगे आप? ऐसा नहीं, उनको पता जब उन्होंने खाना खिलाया था तो डॉलर नहीं मांगा था उनसे, फ्री में खिलाया था, उन्होंने भी फ्री में सेवा दिया। सो यू बिगिन विद योर सेल्फ एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉलो, अपने आप फॉलो हो जाते हैं। सब मिले उनको। फिर एक बार इंग्लैंड में वो ऐसा इंटरव्यू दे रहे थे रिपोर्टर्स को, रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि आपके देश में, हमारे देश में आप लोग, आप क्यों आए? सब इंडिया के लोग यहां पर आते हैं पैसा बनाने के लिए, आप क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि आप लोग है ना, हमारे ऊपर आपने राज किया 150 साल तक, है ना, 150 ईयर्स तक राज किया, सब कुछ लूट लिया हमारा आपने, संस्कृति लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, कोहिनूर हीरा लूट लिया, टीपू सुल्तान का भवानी तलवार, अपना शिवाजी महाराज का तलवार लूट लिया, टीपू सलमान का सुल्तान का तलवार भी लूट लिया आपने, जो जो हमारे पास बढ़िया बढ़िया था सब चोरी करके लेके गए आप, हमारा कल्चर भी लेके गए, सब डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। लेकिन आप लोग हमारे पास एक चीज लेना भूल गए, वो है डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, जो एक्चुअली हमारा धन था। आपको लगा कि हमारा धन कोहिनूर हीरा है, आपको लगा कि आपका हमारा तलवार हमारा धन है, इसलिए आपने वो चोरी करके ले गए। लेकिन आपने पहचाना नहीं हमारा सही धन क्या है, हमारा सही धन स्पिरिचुअलिटी है, और वो आपको हैंड डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूं। सोचा मैं खुद आके देता हूं, क्योंकि आप लोग भूल गए चोरी करने के लिए, उसको लेने को आया हूं मैं आपसे, कुछ लेने को नहीं आया हूं। जो आप लेने को भूल गए थे उसको देने को आया हूं मैं तो। और बाद में बोला, ये देख रहे हो, एक आदमी उनको हवा दे रहा था, पानी ला के दे रहा था, और ये देख रहे हो ये आपके देश का आदमी है, ब्रिटिश, ये मेरी सेवा करता है और मैं इसको तनख्वाह भी नहीं देता, इज वर्किंग फ्री ऑफ चार्ज फॉर मी। ब्रिटिश आदमी था, ब्रिटिश, जो उनका सेवक डिसाइपल था, मतलब बिना पगार के मेरे लिए काम करता है, क्योंकि वो अभी समझ चुका है कि जो हम लोग भूल गए थे वहां पर चोरी करने के लिए वो मैंने उसको दिया है, इसलिए वो मेरे लिए फ्री में काम करता है। समझ में आपका है? तो ये है इंस्पिरेशन, कि ब्रिटिशों को बहुत गर्व रहता है, वो इंडियन लोगों को बहुत नीचा मानते हैं, अरे ये क्या है इंडियन लोग, इन पर हमने 150 साल राज किया है, हम मालिक हैं, ये हमारे नौकर थे, ऐसा एक घमंड है उनके पीछे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि यहाँ का असली दौलत क्या है, धन क्या है। तो प्रभुपाद जी ने अपने खुद के एग्जाम्पल में पहले दिखाया, तो लोगों को बाद में फिर हिचकिचाट नहीं हुआ, अरे ये तो इंडियन साधु है, हम तो ब्रिटिश लोग हैं, थोड़ी इनको फॉलो करेंगे हम तो ब्रिटिश लोग, ऐसा नहीं किया। जब देखा कि व्यक्ति जो है ना वो बहुत स्पिरिचुअल है, और मैं आपको बताता हूं एकदम एकदम लास्ट एकदम क्रक्स वाली बात, ये कोऑपरेशन, ये ह्यूमिलिटी, ये इंस्पिरेशन विदाउट बिकमिंग स्पिरिचुअल ये नहीं हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप कितने तारे तोड़ेंगे ना भाषण के अंदर, कुछ नहीं होता है। खुद को पहले हमको भगवान का सच्चा डिवोटी बनना चाहिए, हाँ रियली, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू तरीके से, क्रिश्चियन तरीके से, मुसलमान तरीके से, वो तरीका तो ठीक है, बट हृदय के तरीके से ट्रूथफुली यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जब भगवान का भक्त आप बनेंगे, उनका नाम पुकारेंगे, तो अपने आप आपके अंदर ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ ईगो, कोऑपरेशन, टॉलरेंस अपने आप आ जाएगी, और तब ये बड़ी बड़ी बातें बहुत आसान आसान नजर आएंगी आपको। आपको लगेगा जो प्रभुपाद ने किया ना तो मैं भी करूंगा, अभी मेरे एक और संस्था खोलूंगा, जाऊंगा वर्ल्ड वाइड सब जगह पे करूंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद के लाइफ में पहले उसको उतारा था। हम लोग उनके यश से भाग जाते हैं, वाह 600 सेंटर्स, इतने सारे बुक्स, इतने सारे डिसाइपल्स, मुझे भी होना चाहिए, उसके आप खाली वो क्रीम देख रहे हो, आप केक को नहीं देख रहे हो, केक तो पहले उन्होंने पकाया था ना, पहले वो बिना किए आप जाते हैं भागने के लिए तो गिर जाते हैं फिर। लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद के जीवन में पहले उसको उतारा, इसलिए उनको सबसे कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और सेवा सब प्राप्त हुआ, इसलिए आज भी उनकी संस्था बढ़ रही है। छोटी संस्था है, नर्सिंग स्कूल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल, हाँ केवल 700 एम्प्लॉय काम करते हैं। ये भारत में तो 90,000-1.5 लाख लोग की संस्था भी है, कंपनियां तो 700 लोग का, यहाँ पर कितना काम करते हैं पीवीदोषी में, हमें नहीं 30-45 कितने होंगे मैक्सिमम, तो कहने का मतलब क्या है कि आप सब लोग अगर भगवान के सच्चे भक्त बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक फैमिली बन जाएगी आप। लेकिन बोलते हैं हम लोग मन में क्यों भगवान का भक्त बने हम क्या जरूरत है भगवान का भक्त बनने, लेकिन सबको जरूरत है। अगर आपको एक सुंदर स्वस्थ आनंदमय पारिवारिक जीवन जीना है तो आपको भक्त बनना ही होगा, तभी आप जी सकते हैं, नहीं तो फिर इट्स ऑल बिग स्टोरी, गुड इन मूवीज, है ना, लव, सैक्रिफाइस, इंस्पिरेशन ओनली इन मूवीज, नाइस टू सी एंड एंजॉय इन द वीकेंड, बाद में वीक फुल वीक में क्या करना है उसको भूल जाना है, वापस अपनी रियलिटी में आना है। इसलिए सब लोगों को पहले भगवान का नाम लेकर अपने आप को नम्र बनाना है, तो जब वो बन सकते हैं, इसलिए वो कहना कि यू कैन नॉट चेंज एनीबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वो जब होगा तो आपको दुनिया भी चेंज होते हुए नजर आएगी, जब हम चेंज हो जाएंगे तो। ओके, और क्या प्रश्न है किसी का? यस, हाँ हाँ, यस यस। तो अभी 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 कुछ ही दिन में, 2 दिन के अंदर कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, बहुत सुंदर कार्तिक महीना, बैठी, लेट्स सिट। दो दिन में कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सब लोगों को मैं कार्तिक की बधाई देता हूँ शुरू से ही, क्योंकि आपको एक सुंदर मौका मिलने वाला है भगवान के भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं, और इसमें हम लोग भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, कुछ नियम पालन करते हैं, अपने के लिए अपने ऊपर ही नियम डालते हैं कुछ एक्स्ट्रा, और होली प्लेस में जाते हैं भगवान के धाम में, विजिट करते हैं वहाँ पर, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये सब करने से इस महीने में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और अगर आप जा भी नहीं पा रहे हो, अपने घर में रहकर आप भगवान को दीपक अर्पण कर सकते हो। अगर आप एक घंटा जप कर रहे हो तो एक घंटा 10 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर दिस मंथ। 16 माला कर रहे हो तो आप 18 माला कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रोज 5 बजे उठते हो तो 4:45 बजे उठ सकते हो 15 मिनट की सेक्रीफाइस ऑफ टाइम। जो रोज नहीं कर सकते हो उस महीने में करेंगे, ऐसा वचन ले सकते हो कि भाई इस महीने में मैं रोज मंदिर जाऊंगा, कुछ भी हालत हो, कुछ भी हो जाऊंगा, एक दीपक अर्पण करके आ जाऊंगा, ये मेरा इस महीने का व्रत है। ये करने से अनंत लाभ होता है। ऐसे कहते हैं देवता लोग आपकी पूजा करने को तैयार हो जाते हैं अगर कोई कार्तिक में व्रत करता है तो। और जो व्यक्ति कार्तिक में व्रत नहीं करता है, सुना है उसके बारे में क्या क्या होता है? शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। मतलब तो जो व्यक्ति कार्तिक में कोई व्रत नहीं करता है उसके पहले किए हुए सारे व्रत फेल हो जाते हैं, ऐसा लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पहले आपने देवी का व्रत किया होगा, देवा भगवान का क्या होगा, किसका किसका व्रत किया होगा, सारे व्रत निष्फल हो जाते हैं अगर वो कार्तिक का व्रत नहीं करता है। और जो कार्तिक का व्रत करता है उसको बाकी कोई व्रत करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा भी लिखा है, नो नीड टू परफॉर्म एनी अदर व्रत एक्सेप्ट कार्तिक व्रत। और वो बहुत मुश्किल व्रत लेना भी जरूरत नहीं है, ये सिंपल व्रत ले लो कि मैं एक माला एक्स्ट्रा करूंगा बस, रोज से एक माला एक्स्ट्रा, ये बड़ा पर्वत नहीं है, छोटा सा। और वो 6 बजे उठता तो 5:45 बजे उठूंगा, और वो 15 मिनट में एक माला दो माला एक्स्ट्रा करूंगा। उठकर क्या टीवी देखना नहीं, पेपर पढ़ना नहीं, अरे प्रभु जी ने बोल दिया मैं 5:45 बजे उठ गया, भाई लौकिक आया क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया आया क्या, बैठ गया, ऐसा नहीं। वो 15 मिनट 20 मिनट करना क्या है ना, भगवान के विषय में आपको टाइम डालना है, उठते ही भगवान के विषय में जो मिलते हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा, उसमें आपको भगवान का नाम का जप, भगवान का किताब, आप बोल सकते हैं कि मैं उठकर एक बाइबल का वर्स पढ़ूंगा या एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा या श्रीमद् भागवत का एक कहानी पढ़ूंगा, व्हाटएवर, भगवान के विषय में आपको एक्टिविटी करूंगा, आपको अनंत लाभ मिलेगा। क्यों? बाकी में भी आप ऐसा कर सकते हो, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, ये महीने में करेंगे बहुत ज्यादा लाभ। जैसे आपको 3 शर्ट खरीदना है, बाकी टाइम जाएंगे तो आपको 3 शर्ट का प्राइस देना पड़ेगा, सेल में जाएंगे सेल में 1 शर्ट के प्राइस में 3 शर्ट मिलेगी लिखा है बोर्ड में ना, बाय वन गेट टू फ्री, मतलब क्या हो गया, एक के प्राइस में 3 मिल रहे हैं ना आपको, लेकिन वो सब टाइम नहीं मिलता है, जब सेल लगता है वो देखना पड़ता है कहां सेल लग रहा है, 2 अक्टूबर हो गया क्या, अरे हाँ महात्मा गांधी जन्म हो गया, अभी वो खादी में सेल लगेगा, खादी ग्रामोद्योग में, तो वेट करेंगे तो भी आपको वहां जाकर सस्ता माल मिलेगा उसी महीने के अंदर, साल भर नहीं मिलेगा। उस तरह से भगवान का एक ग्रैंड सेल है, भगवान कार्तिक में ग्रैंड सेल खोल लेते हैं, बोला आ जाओ, उसको भी आना, आ जाओ, नो भेदभाव, कोई भी आएगा व्रत करेगा लाभ मिलेगा उसे। तो ऐसा मंथ अभी शुरू हो रहा है परसों, और शुरू किससे हो रहा है, रास पूर्णिमा से। संक्षेप में रास पूर्णिमा का मतलब क्या है कि भगवान ने अपने भक्तों को सबसे श्रेष्ठ आनंद दिया उस दिन रास के डांस के माध्यम से। ऐसा कहते हैं कि भगवान जो होते हैं वो जितना अपने भक्तों के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं उसका पराकाष्ठा यानी कि उसका हाईएस्ट फॉर्म क्या है, रासलीला। बाय द वे ऑफ रासलीला लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड एग्जिबिट्स हिज लव फॉर हिज डिवोटीज इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे, द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वंडरफुल वे टू एग्जिबिट लव फॉर हिज डिवोटी इज थ्रू रासलीला। और वो उस दिन करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक, और वो रासलीला हम सबके लिए अवेलेबल है, कैसे, हरिनाम संकीर्तन से। जब हम लोग मिलकर कीर्तन करते हैं ना तो भगवान ने वही आनंद जो है वापर युग का वो कलयुग में अवेलेबल कर दिया है सबको। भगवान के धाम का जो आनंद है, सबसे श्रेष्ठ आनंद, वो उन्होंने कलयुग में हरिनाम संकीर्तन कीर्तन के माध्यम से आप लोगों को सबके लिए प्रस्तुत कर दिया है। हम लोग उतने ग्रेट डिवोटीज नहीं है जो नाचे थे उस डांस में, लेकिन फिर भी ना होते हुए भी हमको उन्होंने वही कैप्सूल अवेलेबल कर दिया मार्केट में, अभी आप ले सकते हो उसको। तो ऐसा है कार्तिक में, इसमें अंदर भगवान की बहुत बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हुई हैं। भगवान को माता ने डोरी से बांध दिया है, भगवान को माता ने प्रेम दिया है, स्तनपान कराया है, नहलाया है, सब बचपन की लीला सब इस महीने में हुई। भगवान ने पुतना को मारा है, शक्तासुर को मारा है, गोवर्धन को उठाया है इस महीने में, पता है क्या आपको? 7 दिन 7 रात गोवर्धन को इस महीने में उठाया था भगवान ने कार्तिक महीने में। नरकासुर को इसी में मारा है। हाँ, बहुत सुंदर महीना है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, और महीना भर हम लोग वो गीत गाते हैं भगवान को कैसे माता ने बांधा, इसलिए गीत गाते रहते हैं और भगवान को दीपक अर्पण करते रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जीवन का सारा सार जो है इस महीने में आपको प्राप्त हो सकता है, अगर आपको इच्छा है तो इस महीने में आपको भगवान का सारा भक्ति प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राधा रानी इस महीने की देवता है। नाम दामोदर का है लेकिन बैकग्राउंड में कौन है? राधा रानी। जो भी व्यक्ति इस महीने में दामोदर के नाम से कोई व्रत करता है, राधा रानी बैकडोर से उसको वरदान देती है। सामने ही दामोदर है, पीछे राधा रानी है, और भक्ति को देने वाली कौन है? राधा रानी। सारा भक्ति का जो आशीर्वाद है वो राधा रानी की ओर से आता है, और ये महीने में वो उन्होंने तय किया हुआ है कि दामोदर के महीने में जो भी व्रत करेगा उसको वरदान मैं दूंगी। ऐसे होते ना, एक दादी होता है, दादी होती है, वो बोलेगी कि मेरी पोती की शादी में जो भी आएगा ना उसको मैं घड़ी गिफ्ट दूंगी, क्योंकि तो पोती पर उसको इतना प्रेम है, वो तो प्रेम की वजह से शादी में कोई आएगा तो उसको वो गिफ्ट उसकी तरफ से मिलेगा। वो बैकग्राउंड में है, शादी किसकी है कोई सामने है, लेकिन दादी की तरफ से सबको गिफ्ट मिल रहा है। इसी तरह से व्रत दामोदर जी का है, मंत्र कार्तिक का है, जो भी करेगा उसके पीछे राधा रानी उसको भक्ति का वरदान देने को तैयार है, ऐसा महीना है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।